जी, अगला टॉपिक बहुत ही खूबसूरत हज्जत अलविदा, पेज 614 है। दावत व तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की अलूहियत के इस्बात यानी उसको साबित करवाना और इसके माँ सिवा की अलूहियत की नफ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए मुआशरे की तामीर और तश्कील अमल में आ गई। अब गोया गैबी हातिफ आपके कल्ब व शऊर को ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया में आपके क़याम का ज़माना इख्तिताम के करीब है। ये क्या होता है गैबी हातिफ? आप देखिए कि किसी भी जगह आप जाते हैं ना, जब तक काम नहीं होता आप रुके रहते हैं, जब काम हो जाता है या आपको लगता है अब नहीं होना तो वापस आ जाते हैं। फितरत का असूल है। अल्लाह ने हमें 60-70 साल की ये जो ज़िंदगी दी है ना, एक एवरेज के तौर पे, इसमें अब मैंने आपने क्या कर लिया है ये तो अब हम ही जाने। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो उम्र मुबारक अता की थी, इसमें इतने बड़े बड़े काम हो चुके कि अब इसके बाद बस अब यही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के पैगामात हैं। काम हो जाए तो फिर दिल भी नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से बेहतरीन फ़ायदा लिया। चुनाचे आपने हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हों को 10 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया तो रुख्सत करते हुए और दूसरी बातों के साथ ही साथ ये फरमाया, ए माज गालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे, बल्कि गालिबन मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। और हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हों ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम से रोने लगे। ज़ाहरी बात है, जिनका इतना साथ हो, जिनके साथ रात दिन का उठना बैठना हो, तो उनकी जुदाई इंसान को उदास तो करती है, दुखी तो करती है, लेकिन याद रखिए कि किसी को याद रखने का या याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके मिशन को कंटिन्यू रखा जाए, ताकि आगे भी तो मुलाकात होनी है ना। वहाँ शर्मिंदगी हो गई तो क्या बनेगा? कुछ लोग कहते हैं चलो चलें, कौन सा आप मिलना है, देखेंगे ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। कोई भी ना मिले, आगे जाके तो मिलना है ना। तो अल्लाह के नबी के इन अल्फाज से मास बिन जबल समझ रहे हैं कि अब जुदाई की घड़ियां करीब हैं। दर हकीकत अल्लाह ताला चाहता था कि अपने पैगंबर को इस दावत के समरात दिखा दे, जिसकी राह में आपने 20 बरस से ज़्यादा अरसे तक तरह तरह की मुश्किलात और मुशक्क़तें बर्दाश्त की थी, और इसकी सूरत ये हो कि आप हज के मौके पर अतराफ मक्का में कबाइले अरब के अफराद और नुमाइंदगान के साथ जमा हों, फिर वो आपसे दीन के अहकाम और शराय यानी शरीयत की बातें हासिल करें और आप इनसे ये शहादत लें कि आपने अमानत अदा कर दी, पैगाम अरब की तबलीग फरमा दी और उम्मत की खैरखाही का हक अदा फरमा दिया। इस मशीयत अज़दी यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो ये काम होना था, इसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीखी हज्जे मबरूर के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो मुसलमानाने अरब जौक दर जौक पहुंचना शुरू हो गए। हर एक की आरजू थी कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पाक को अपने लिए निशाने राह बनाए और आपकी इक्तदा करे। फिर सनीचर के दिन, जबकि जी कादा में 4 दिन बाकी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच की तैयारी फरमाई, बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर रोड़ी, कुर्बानी के जानवरों को कलादा पहनाया और जोहर के बाद कूच फरमा दिया और असर से पहले ज़ुल्खुलैफा पहुंच गए। वहां असर की नमाज 2 रकत पढ़ी और रात भर खैमा जन रहे। सुबह हुई तो सहाबे कराम से फरमाया, रात मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाले ने आकर कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उमरा है। हज तमत्तो की तरफ इशारा। फिर जोहर की नमाज से पहले आपने अहराम के लिए गुसल फरमाया। इसके बाद हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने आपके जिस्मे अथर और सर मुबारक में अपने हाथ से ज़रीरा और मुश्क आमेज़ खुशबू लगाई। खुशबू की चमक आपकी मांग और दाढ़ी में दिखाई पड़ती थी, मगर आपने ये खुशबू धोई नहीं बल्कि बरकरार रखी। फिर अपना तहबंद पहना, चादर रोड़ी, 2 रकत जोहर की नमाज पढ़ी। इसके बाद मुसल्ले ही पर हज और उमरा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए सदाए लब्बैक बुलंद की। फिर बाहर तशरीफ़ लाए, कस्वा यानी ऊँटनी पर सवार हुए और दोबारा सदाए लब्बैक बुलंद की। इसके बाद ऊँटनी पर सवार खुले मैदान में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी लब्बैक पुकारा। इसके बाद आपने अपना सफ़र जारी रखा। हफ्ते भर बाद जब आप सरे शाम मक्का के करीब पहुँच चुके तो जी तुवा में ठहर गए वहीं रात गुजारी और फजर की नमाज पढ़कर गुसल फरमाया। फिर मक्का में सुबह दम बिल्कुल सुबह से पहले दाखिल हुए। ये इतवार 4 ज़िलहज 10 हिजरी का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थी। औसत यानी दरमियानी रफ्तार से इस मुसाफत का यही हिसाब भी है, यानी आपको पता चला कि मदीना से मक्का अगर आता है इंसान तो 8 रातें लग जाती हैं ऊंट तो ऊंटों पर सवार काफलों की सूरत में। मस्जिद हराम पहुंचकर आपने पहले खाना काबा का तवाफ किया, फिर सफा और मरवा के दरमियान सई की, मगर अहराम नहीं खोला क्योंकि आपने हज और उमरे का अहराम एक साथ बांधा था। इसको क्या कहते हैं? हज किरान, साथ साथ, यानी इसके बीच में उमरे और हज के दरमियान में अहराम नहीं खुलता। और अपने साथ हदी यानी कुर्बानी के जानवर लाए थे। तवाफ और सई से फारिग होकर आपने बालाई मक्का में हजून के पास क़याम फरमाया, लेकिन दोबारा तवाफ हज के सिवा कोई और तवाफ नहीं किया। आपके जो सहाबा कराम आपके साथ हदी यानी कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे, आपने इन्हें हुक्म दिया कि अपना अहराम उम्रे में तब्दील कर दें और बैतुल्ला का तवाफ और सफा मरवा की सई करके पूरी तरह हलाल हो जाए यानी अहराम की पाबंदियों से निकल आए। लेकिन चूँकि आप खुद हलाल नहीं हो रहे थे, इसलिए सहाबे कराम को तरद्दुत हुआ। ये भी नोट कीजिएगा, जो काम अल्लाह के नबी नहीं करते थे, सहाबा उसको करने की जरूरत ही नहीं करते थे। उनको लगता था इसमें कुछ मसला होगा। आपने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता जो बाद में मालूम हुई तो मैं हदी ना लाता, और अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी हलाल हो जाता। आपका ये इरशाद सुनकर सहाबाए कराम ने सरे एदाते खम किया और जिसके पास हदी ना थी वो हलाल हो गए। आप जानते हैं हज तमत्तो और हज किरान और हज अफराद। अल्लाह के नबी ने जो एक ही हज किया वो हज किरान था। उस वक्त तक आपको हज तमत्तो का हुक्म नहीं मिला था, लिहाजा आप तो अपना ऐसे ही किया हज, लेकिन लोगों को आपने कहा कि नहीं उम्रा करके अहराम खोल दो, फिर दोबारा उम्र हज के लिए अहराम बांधा जाएगा जब हज के दिन करीब आएंगे, और इसमें फिर कुर्बानी भी घर से नहीं लेके आनी होती, वहीं से करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लाखों लोग इसी तरीके पे हज करते हैं। 8 ज़िलहज्जा जिसको तरविया कहते हैं, तरविया क्यों कहते हैं? पानी पिलाना। ऊँटों को खूब पानी पिला लेते थे कि अब आगे से सफ़र शुरू हो रहा है तो न जाने इनको कहीं पानी मिलेगा भी कि नहीं। तरविया के दिन आप मीना तशरीफ ले गए और वहाँ 9 ज़िलहज की सुबह तक क़याम फरमाया। जुहर असर मगरिब इशा और फजर 5 वक्त की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर इतनी देर तवक्कुफ़ फरमाया यानी रुके वहाँ के सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो वादिय निमरा में कुब्बा तैयार था यानी आपके खड़े होने के लिए जगह। इसी में नज़ूल फरमाया। फिर जब सूरज ढल गया तो आपके हुक्म से कस्वा पर कजाबा कसा गया और आप बतने वादी में तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आपके गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 44,000 और 24,000 1 लाख के आगे इतने इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था, यानी इतने लोग इकट्ठे जमा हों तो ऐसे ही लगता है कि पानी की लहरें हैं। आपने इनके दरमियान एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अब आगे देखिएगा कि हज्जतुल विदा की मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें आपको शरीयत का खुलासा मिलेगा। पहली चीज़, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद इस मुकाम पर मैं तुमसे कभी ना मिल सकूं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवां महीने की यानी ज़िलहज की, और मौजूदा शहर की हुरमत है यानी मक्का। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पांव तले रौंद दी गई, जाहिलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए, और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनू सात में दूध पी रहा था कि इन्हीं अय्याम में कबीला हुज़ैल ने इसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया, और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये सारे का सारा सूत ख़त्म है। हाँ, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मार ना मारना। और तुम पर इनका यह हक है कि तुम इन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसे मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ हरगिज़ गुमराह न होगे, और वो है अल्लाह की किताब। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक तुम भी, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जबकि तुम उसको थामे रखोगे। और वो क्या है? किताबुल्लाह ही व सुन्नती रसूल ही। अल्लाह करे कि आज भी ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए। लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे? साहबा ने काम शहादत देते हैं कि आपने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। आपके इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज़ से लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब आप खुतबे से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसियत दीन पसंद कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है। यानी आज कुरान पूरा हुआ, अल्लाह की शरीयत पूरी हुई, अब आगे कहीं लोग इसको बिगाड़ ही ना दें। खुतबे के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान और फिर इकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद हज़रत बिलाल ने फिर इकामत कही और आपने असर की नमाज़ पढ़ाई, और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई और नमाज़ नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ़ पर तशरीफ़ ले गए, यानी जहाँ खड़े होने का हुक्म था। अपनी ऊँटनी कसवा का शिकम यानी पेट चट्टानों की तरफ किया और जबले मशात यानी पैदल चलने वालों की राह में वाके रेतले एक रतीले तोदे थे, यानी जैसे छोटे छोटे रेत के पहाड़ बने होते हैं ना, छोटी छोटी जगह के जहाँ से लोग पैदल गुजरते थे। तो आप यानी सहाबा ने आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख भी उस वक़्त जो था उसको भी नोट किया, यानी जबले मशात पैदल चलने वालों की राह में वाक़े रतीले तोदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ़ फरमाया, यानी खड़े रहे, यहाँ तक कि सूरज गरूब होने लगा, थोड़ी सर्दी ख़त्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आपने हज़रत उसामा को पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें 1 अज़ान और 2 इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफिल नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और तुलुए फजर तक लेटे रहे। अलबत्ता सुबह नमूदार होते ही अज़ान और इकामत के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद कस्वा पर सवार होकर मशरे हराम तशरीफ़ लाए और किबला रुख होकर अल्लाह से दुआ की और इसकी तकबीरो तहलील और तौहीद के कलेमात कहे। यहाँ इतनी देर तक ठहरे रहे कि खूब उजाला हो गया। इसके बाद सूरज तुलू होने से पहले पहले मीना के लिए रवाना हो गए और अब की बार हज़रत फजल बिन अब्बास को अपने पीछे सवार किया। बतने मुहस्सर यानी बत महसर, बाज़ लोग इसको मख्सर कहते हैं ना, तो सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मुँह हसर। ये वो वादी है जहाँ बाबीलों के ज़रिए से पत्थर फेंकवाए गए थे। तो बतने महसर में पहुँचे तो सवारी को ज़रा तेज़ी से दौड़ाया, फिर जो दरमियानी रास्ता जमराए कुबरा पर निकलता था इससे चलकर जमराए कुबरा पर पहुँचे। इस ज़माने में वहाँ एक दरख्त भी था और जमराए कुबरा इस दरख्त की निस्बत से बहुत मारूफ था। इसके अलावा जमराए कुबरा को जमराए अकबा और जमराए उला भी कहते हैं। फिर आपने जमराए कुबरा को 7 कंकरियां मारी। हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जाते थे। कंकरियां छोटी छोटी थी जिन्हें चुटकी में लेकर चलाया जा सकता था। आपने ये कंकरियां बतने वादी में खड़े होकर मारी थी। इसके बाद आप कुर्बानगाह तशरीफ ले गए और अपने दस्ते मुबारक से 63 यानी 63 ऊँट ज़िबह किए। सुबहान अल्लाह, कितनी ताकत थी अल्लाह के नबी में। और उम्र मुबारक भी देखिए कितनी हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने आपको जिस्मानी ताकत दी भी है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया और उन्होंने बकिया 37 यानी 37 ऊँट ज़िबह किए। टोटल कितने हो गए? 100 ऊँट। इस तरह 100 ऊँटों की तादाद पूरी हो गई। आपने हज़रत अली को भी अपनी हदी में शरीक फरमा लिया था। इसके बाद आपके हुक्म से हर ऊँट का एक एक टुकड़ा काट कर हांडी में डाला और पकाया गया। फिर आपने और हज़रत अली ने इस गोश्त में से कुछ तनावुल फरमाया और इसका शोरबा पिया। गोया के ये दिखाया कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाया जा सकता है, और हर एक में से लेने का भी यही मतलब था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मक्का तशरीफ़ ले गए। बैतुल्ला का तवाफ़ फरमाया। इसे तवाफ़े इफाज़ा कहते हैं। इफाज़ा किसको कहते हैं? अफाज़ यफीज़ उफैज़न। हाँ, इफाज़तुन। पढ़ चुके हैं कुरान में। फिर ना पलट कर आना, यानी अब वापस आए हैं ना उमरा हज करके, तो उधर से आने के बाद का तवाफ़। और मक्का ही में जोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर चाहे जमजम यानी जमजम के कुएं पर बनो अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ ले गए। वो हुज्जाजे कराम को जमजम का पानी पिला रहे थे। आपने फरमाया, बनो अब्दुल मुत्तलिब, तुम लोग पानी खींचो। अगर ये अंदेशा ना होता कि पानी पिलाने के इस काम में लोग तुम्हें मغلوب कर देंगे, तो मैं भी तुम लोगों के साथ खींचता। यानी अगर सहाबे कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पानी खींचते हुए देखते, तो हर सहाबी खुद पानी खींचने की कोशिश करता। और इस तरह हुज्जाज को जमजम पिलाने का जो शर्फ बनो अब्दुल मुत्तलिब को हासिल था, इसका नज़म इनके काबू में ना रह जाता। चुनाचे बनो अब्दुल मुत्तलिब ने आपको एक डोल पानी दिया और आपने इसमें से हस्बे ख्वाहिश पिया। यहाँ भी नोट किया आपने, काम करने से पहले सोचते थे आप। यानी अगर अल्लाह के नबी करते और हर सहाबी उस मोहब्बत में करने लगता, तो डिसिप्लिन टूट जाता। तो किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी नहीं है, किसने पहले करना, बाद में करना, ये सब पहले से नोट होना चाहिए ताकि किसी किस्म की भगदड़ ना मचे। खैर, पूरा दिन हुआ। आज यौमुल नहर था यानी 10 ज़िलहज। अल्लाह के नबी ने आज भी दिन चढ़े यानी चाश्त के वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया था। खुतबे के वक्त आप खच्चर पर सवार थे और हज़रत अली आपके इरशादात सहाबा को सुना रहे थे। सहाबा कराम कुछ बैठे और कुछ खड़े थे। आपने आज के खुतबे में भी कल की कई बातें दोहराई। सही बुखारी और मुस्लिम में और हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हों का ये बयान मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज को खुतबा दिया। आप अक्सर हज्जतुल विदा के नाम पर जो खुतबे की मुख्तलिफ कैफियात देखते हैं ना, तो आज आपको समझ आ जाएगा कि वो मुख्तलिफ जगह पे दिया था। एक तो वही था जो मेन 9 ज़िलहज को दिया था आपने अरफात के मैदान में, लेकिन फिर ये अब अगले दिन को भी दिया। तो कभी अगर अल्फाज का फर्क दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। इस दिन आपने क्या फरमाया? जमाना घूम फिर कर अपनी उसी दिन की हैयत पर पहुंच गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का है, जिनमें से 4 महीने हराम के हैं, 3 पैदर पे यानी ज़ीक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, और एक रजबे मुदर जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान है। मुराद कैसे जानते हैं ना, यानी जो नसी की रस्म उन्होंने अपनाई हुई थी, तो उसकी वजह से हज का मौसम बदल चुका था। हर साल जो हज होता था वो असल तारीखों पर नहीं होता था। जिस साल नबी सल्लम ने हज फरमाया, इस साल वाकई महीना वापस उसी जिलहज की तारीख पे आ चुका था। गोया कि चांद के हेर फेर में लोगों ने जो कुछ की हुई थी चीज़ें, अल्लाह ने अपने नबी से एक ही हज करवाया और वो बिल्कुल सही पे किया। अब देखिए, कहते हैं ना, ख़राब घड़ी भी हो, अगर रुकी भी है सेल्स नहीं, तो 24 घंटों में एक बार वो भी सही टाइम दिखाती है। तो यहाँ ये मुराद है कि उस दिन बिल इत्तफाक ही या अल्लाह की मशीयत के मुताबिक चांद उसी डेट पे था जिस पे हज होता है। आपने ये भी फरमाया कि ये कौन सा महीना है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क्या सहाबा को नहीं पता था कि ये ज़िलहज है? लेकिन ये अदब देखिए, और सीखने का शौक जब होता है तो इंसान अपने आप को बहुत आगे बढ़ाकर नहीं बल्कि पीछे रख पेश करता है कि शायद दोबारा सुनकर मुझे कोई और बात अच्छी मिल जाए। साहबा बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन फिर आपने फरमाया, क्या ये जिलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा, आप इसका कोई और नाम रखेंगे। मगर आपने फरमाया, क्या ये बलदा यानी मक्का नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अच्छा तो ये दिन कौन सा है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा, क्या आप इसका कोई और नाम रखेंगे? मगर आपने फरमाया, क्या ये यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अच्छा तो सुनो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में आज के दिन की हुरमत है। देखिए, सिखाने का बड़ा प्यारा अंदाज है। उस्ताद अगर इस अंदाज से बात करें तो शागिर्दों के दिल पे लिखी जाती है वो बात। फिर आपने फरमाया, तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के मुतल्लिक पूछेगा, लिहाजा देखो मेरे बात पलट कर गुमराह न हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बताओ, क्या मैंने तबलीग कर दी? साहबा ने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अल्लाह गवाह है, जो शख्स मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे, क्योंकि बास वो अफराद जिन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी वो बास मौजूदा सुनने वालों से कहीं ज़्यादा इन बातों के दरो बस्त को समझ सकेंगे यानी इसकी बारीकियों को, इसकी हिकमतों को समझेंगे। इससे पता चलता है कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में उससे लोग उतना फ़ायदा नहीं उठाते या उसके पास मौजूद लोग उससे इतना फ़ायदा नहीं उठाते जितना फ़ायदा दूसरे उठा जाते हैं। ये नसीब की बात है। आज उम्मत मुस्लिमा जो बराह रास्त नबी सल्लम की उम्मत है, आप देखिए कि आज वो कहाँ गए और इसके बाद दूसरे लोग जो रिवॉर्ड्स की सूरत में कन्वर्ट होकर इस्लाम पे आए वो आज कितनी खिदमत कर गए दीन की। क्या आज ऐसा नहीं है कि हम बोन मुस्लिम नबी के इस दीन से फारिग हो चुके? हमें तो बस छोटी सी अपनी ही बातें याद रह जाएँ तो बड़ी बात है। उन्होंने तो दीन को सामने रखकर कैसे पेश किया? आज हम शर्मिंदा नहीं होते जब कोई गैर मुस्लिम कबूल करके कलमा और इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ के फिर इल्म लेकर हमें सिखाता है। आप इंग्लिश स्पीकर्स के नाम लिखिए, आपको उस मोर देन 60 to 70% रिवर्ट्स दिखेंगे, क्योंकि वो जहालत में कुछ वक्त गुजार चुके होते हैं। हम मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए, हमें पता ही नहीं हमारे नबी ने ये दीन हमें दिया कैसे। जितनी कुर्बानियों से अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल और सहाबा ने ये दीन हम तक पहुँचाया, और हम छोटी सी बात पर कहते हैं क्या हर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेंगे जो होगा। यानी आज हमने अपने प्यारे नबी की मेहनतों पर पानी फेर दिया, छोटी छोटी बातों पे। दीन तो हमने अपनी मर्जी का किया ही किया, जीना क्या कर दिया? आज कोई हमें देखे और अपने इस कुरान को पढ़े तो कहेगा, वो कुरान दो जो जिस पे तुम मुसलमान अमल करते हो, और अगर तुमने बनना है तो अपने नबी जैसे बनो। ये चंद बातें अपने नबी की ले के बाकी दूसरों की लेकर क्या करोगे? आप देख रहे हैं कि मुख्तसर सा खुतबा है, लेकिन इसमें अपने हर मौजू को टच किया। अगली बात में आपने फिक्र आखिरत दिलाई, कहा कि और तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे, वो तुमसे तुम्हारे आमाल के मुतल्लिक पूछेगा, लिहाजा देखो मेरे बात पलट कर गुमराह ना हो जाना। देखिए, लीडर्स को फिक्र होती है। अल्लाह के नबी जैसा बड़ा मोहसिन कौन था इंसानियत का? आपको ये पता था कि शैतान रखने डालेगा, और अगर आपके जाने के बाद लोग वापस इस्लाम छोड़कर दूसरी तरफ चले गए तो आपको दुनिया में इसका गम लगा हुआ दिख रहा है। इस जुमले में कहा, मेरे बात पलट कर गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बताओ, क्या मैंने तबलीग कर दी? साहबा ने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अल्लाह गवाह है, जो शख्स मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे, क्योंकि बास वो अफराद जिन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी वो बास मौजूदा सुनने वाले से कहीं ज़्यादा इन बातों के दरो बस को समझ सकेंगे। ज़रा सा गौर कीजिए इस पे। एक रिवायत में कि आपने इस खुतबे में ये भी इरशाद फरमाया, याद रखो कोई भी जुर्म करने वाला अपने सिवा किसी और पर जुर्म नहीं करता, यानी इस जुर्म की पादाश में कोई और नहीं बल्कि खुद मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। याद रखो, कोई जुर्म करने वाला अपने बेटे पर या कोई बेटा अपने बाप पर जुर्म नहीं करता, यानी बाप के जुर्म में बेटे को या बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई, वहां ऐसा नहीं होगा। याद रखो, शैतान मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारे इस शहर में कभी भी इसकी पूजा की जाए, लेकिन अपने जिन आमाल को तुम लोग हकीर समझते हो, इनमें इसकी इताअत की जाएगी और वो इसी से राजी होगा। यानी शिर्क तो नहीं होगा मक्का में, लेकिन इसके इर्द गिर्द और बहुत सारे जाल फैला दिए जाएंगे। इसके बाद आप अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 जिलहज को मीना में मुकीम रहे। अय्याम तशरीक कौन से हैं? जिसमें तकबीरात भी पढ़ी जाती है और कुर्बानी भी इनके अंदर की जा सकती है। इस दौरान आप हज के मनासिक भी अदा फरमा रहे थे और लोगों को शरीयत के अहकाम भी सिखा रहे थे, अल्लाह का जिक्र भी फरमा रहे थे, मिल्लत इब्राहिमी के तरीके यानी सुनन सुनने हदी भी कायम किए कर रहे थे, यानी पूरा हज करके दिखाया, विजुअलाइज हज था। साहबा ने जिन्होंने आपके साथ किया वो ऐसे ही जैसे आज आप वीडियो में किसी को हज करता हुआ देखें। और ऐसा करना देखना ज़्यादा मौसर होता है सिर्फ बातों के सुनने से, वो काम करने से। इसी तरह शिर्क के आसार और निशानात का सफाया भी फरमा रहे थे। आपने याम तशरीक में भी एक दिन खुतबा दिया, चुनाचे सुनन अबी दाऊद में सही सनद हसन सनद है कि हज़रत सरा बिनते बिनहान रदी अल्लाह अनहा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें रुऊस के दिन खुतबा दिया और फरमाया, क्या याम तशरीक का दरमियानी दिन नहीं है? आपका आज का खुतबा भी कल यानी यौम नहर के खुतबे जैसा था, और ये खुतबा सूरत नसर के बाद सूरत नसर के नजूल के बाद दिया गया था। ये कौन से दिन थे? 12 ज़िलहज का दिन है। औनुल माबूद किताब है, आप उसमें देख सकते हैं। मुराद क्या है कि बीच का दिन, बिल्कुल यानी याम तशरीक जो 3 अलग दिन है ना, 11, 12, 13, तो ये 12 के दिन को रुउस कहते हैं। रुउस का मतलब है सर ऊपर, यानी 3 में से बीच वाला हिस्सा सबसे ऊपर है, इससे ये मुराद है। याम तशरीक के खात्मे पर दूसरे यौम नफर यानी 13। अब देखिए हर दिन के अंदर फिर नाम है, याम तशरीक फिर उसके बाद हर दिन का अलग नाम है, ये मुराद है। तो आपको ये असाइनमेंट में सवाल दिया जा सकता है कि यौम नफर कौन सा दिन होता है, ठीक है। 13 ज़िलहज को नबी सल्लम ने मीना से कूच फरमाया और वादी अबतख के खैफ बनी कनाना में फ्रोकश हुए। दिन का बाकी मानदा हिस्सा रात वहीं गुजारी दी और जोहर असर मगरिब और ईशा की नमाजें वहीं पढ़ी। अलबत्ता ईशा के बाद थोड़ा सा सोकर उठे, फिर सवार होकर बैतुल्ला तशरीफ ले गए और तवाफे विदा फरमाया। और अब तमाम मनासिक हज से फारिग होकर आपने सवारी का रुख मदीना मनवरा की राह पर डाल दिया। इसलिए नहीं कि वहां पहुंचकर राहत फरमाएं, बल्कि इसलिए कि अब फिर अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में एक नई जिद्दोजहद का आगाज़ फरमाएं। ये होती है बामकसद लोगों की ज़िंदगी। एक काम पूरा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते मक्का फतह हो गया, अल्लाह के नबी के लिए अच्छा सा घर बना दो और आरामदेह जगह दे दो और मज़ा करें और पेंशन पे ज़िंदगी गई। एक मोमिन कभी पेंशन पे नहीं आता, उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी वो दिन होगा और होना चाहिए। यही दुआ मांगनी चाहिए कि जिस दिन वो अपने रब से मुलाकात करे तो उस दिन भी वो ऑन जॉब हो, ऑन ड्यूटी हो। अल्लाह ने ईमान की वजह से इतनी ऑप्शंस रखी हैं कामों की कि वो कहते हैं ना कि वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, अभी तो काम बड़े हैं। और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम देखेंगे कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद क्या किया। दिल में तो हर बात पढ़ने के बाद लग रहा है कि बस अब फारिग हो गए, अब फारिग हो गए, इसके बाद अब आपका कोई काम नहीं है। नहीं, आप देखिए कि इस्लाम में एक तो रिटायरमेंट का कोई तस्करा नहीं है। अबू बकर सिद्दीक से लेकर चारों खुलफा को देख लीजिए, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अपनी जगह पे थे। हमारे ज़रा कोई बंदा काम करना सीखता है उसको हटाकर दूसरे को ले आते हैं। आज के जमहूरी निज़ाम में यही तो है। क्या हुआ, तजुर्बात में कौम को डाल दिया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें पढ़कर दिल पर यकीनन एक बोझ भी आता है और खुशी ये होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सी ज़िंदगी में इतना कुछ कर दिया। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे वो काम ले ले कि कल जब क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हो तो शर्मसारी ना हो। अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि अल्लाह तू बेनियाज है, तुझे क्या लगे मेरा हिसाब ना ले, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर तूने मेरा हिसाब जरूरी लेना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर लेना, मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना करना। ये एहसास नदामत है, आज उम्मत को ये नदामत आनी चाहिए। बड़े बड़े दावे करने, बड़े बड़े नारे लगाने, बड़े बड़े जश्न मनाने और सारी सारी रात बत्तियां जलाकर बातें करना आसान है, लेकिन कल नबी के सामने खड़े होकर ये बताना कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या था और मैंने कितनी सुन्नतों को माना और कितनी को पीछे डाल दिया। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की रसवाइयों से बचाए। वक्त पूरा हो गया, इंशाल्लाह ताला अगला हिस्सा कल होगा इसी वक्त पे जिस पे आज हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने माइक लेना तो ले लीजिए।